तो ऐसे श्रवण इस तरह से करना चाहिए कि करते रहे कान भर जाए कृष्ण कथा से। पिबंति ये भगवत आत्मनः सताम। तो किनके बारे में कथा सुननी चाहिए? भगवान के बारे में, जो उनके भक्तों के लिए बहुत प्रिय हैं। आत्मनः सताम, सताम अर्थात भक्तों के लिए। तो ऐसे कृष्ण कथा का श्रवण करने से क्या लाभ होगा? पुनंति ये शुद्धिकरण होगा। किस तरह का शुद्धिकरण होगा? विषय विदूषित आशयम। विषय अर्थात संसार के भोग के वस्तु, विदूषित अर्थात जो कलमश सहित हैं, जो गंदे हैं। आशयम मतलब इच्छाएं। तो इन सब गलत इच्छाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। पुनंतिते विषय विदूषिताशयम। और जब शुद्ध हो जाते हैं तो फिर क्या गति होती है हमारी? व्रजन्ति। हम चले जाते हैं मृत्यु के बाद कहां पे? चरण सरोरुहांतिकम। भगवान के चरण कमलों के प्राप्ति करते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो केवल भगवान की कथा, भगवान के नाम आदि श्रवण करके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। लेकिन जब हम श्रवण करते हैं फिर कीर्तन भी करना चाहिए, जो कान के अंदर से जाएगा वो निकलना भी चाहिए उसे। तो कृष्ण कथा कृष्ण नाम सुनेंगे और मुंह से भी कृष्ण कथा कृष्ण नाम निकलना चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज हमने विषय, ये विषय इसलिए चुना कि हम याद कर रहे थे कि थोड़े दिन पहले जब मैं किसी दूसरे देश में था तो वहां ऐसे भक्तों के संग में मैं गया, और जब भी वहां जाता हूं इनके बीच में जाता हूं, जो बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, लेकिन ये कृष्ण भक्त है, बहुत ही अच्छे कृष्ण भक्त हैं। उनमें से कोई दीक्षित भी है, तो उनकी भाषा हमें तो नहीं आती, इशारों से वो भाषा करते हैं, वो बोलते हैं। परंतु एक भक्त है जो सुन भी सकते हैं, उनकी भाषा भी जानते हैं, तो वो अनुवाद करते थे। हम अपनी भाषा में बोलेंगे मुंह से, और वो अपने हाथों से, चेहरे से वगैरह वो इशारा करते हैं, और जो बहरे भक्त बैठे हैं वो समझ लेते हैं। तो इनके अवस्था का चिंतन हम कर रहे थे, देखिए इनकी परिस्थिति कैसी है। यदि कोई व्यक्ति अंधा होता है अवश्य कष्ट का कारण होता है, दुनिया के रंग नहीं देख सकते, रूप नहीं देख सकते, कृष्ण का रूप नहीं देख सकते, विग्रह भगवान का नहीं देख सकते हैं इन भौतिक आंखों से। परंतु जब कोई ध्वनि हम सुन नहीं सकते तो ये तो बहुत ही ज्यादा कठिन है सहन करना। समझ लीजिए कि ऐसी दुनिया जहां सब कुछ शांत है, कोई ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे रही, कैसे लगेगा? कम से कम हम अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, आंखों में पट्टी लगा सकते हैं, फिर हम कुछ नहीं देखेंगे। परंतु कानों को बंद करने के बाद भी कोई ना कोई आवाज तो अवश्य जाता है अंदर। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे कान बंद कर लीजिए, कुछ अंदर भी डाल लीजिए रोकने के लिए, फिर भी थोड़ी बहुत आवाज तो जाएगी अंदर। आवाज के बिना, ध्वनि के बिना नहीं रह सकते। तो जो लोग बहरे हैं वो बोल भी नहीं सकते। जो बहरे हैं वो क्यों नहीं बोल सकते बताएंगे आप? क्योंकि क्या बोलना चाहिए उनको पता नहीं। जैसे हम हरे कृष्ण कहते हैं, ह रे, तो हम लिखते हैं ह, उनको अक्षर आता है, परंतु इस अक्षर का उच्चारण कैसे करना चाहिए उनको नहीं आता, क्योंकि कभी उन्होंने सुना नहीं है। जब बच्चे को सिखाते हैं ह रे, तो वो भी हमारे पीछे पीछे सुन के बोलता है, रे। वो सुनता है कि हम ह कह रहे हैं तो वो ह कहता है, फिर हम रे कहते हैं तो वो भी रे कहता है, तो ह रे। परंतु जो बहरा है, जो सुन नहीं सकता है, उसे पता नहीं कि ह क्या होता है, रे क्या होता है, तो उसे कुछ पता नहीं है कि कैसे बात करना चाहिए, इसलिए वो भाषा बोल नहीं सकता। उसके मुंह से आवाज निकलती जरूर है, यदि वो चिल्लाना चाहे, परंतु केवल इस तरह के आवाजें वो निकाल सकता है, परंतु मनुष्यों की भाषा में नहीं बात कर सकता, क्योंकि उसने मनुष्यों की भाषा कभी सुनी नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं सकता। किसी भाषा सीखने की पद्धति क्या है पता है? केवल व्याकरण के द्वारा नहीं, सुनने के द्वारा। बच्चे किस तरह से भाषा सीखते हैं? पाठशाला में जाने के पहले ही वो काफी कोई कुछ भाषा सीख सीख लेते हैं, फिर आगे चल के पाठशाला में उस भाषा का जो ज्ञान है वो आगे और बढ़ता है, परंतु सुन के वो भाषा सीखते हैं। छोटा छोटा बच्चा भी सुन लेता है, इसको क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, और बहुत ही जल्दी 2 साल 3 साल में बहुत कुछ बात करने लगता है। व्याकरण भी कभी कभी सही बोल लेता है, हालांकि कभी गलती भी कर लेता होगा, परंतु काफी कुछ सही भी बोल लेता है। लेकिन जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है ना। और क्योंकि वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो भी ये प्रश्न आता है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसा जो व्यक्ति है, वो कृष्ण भक्ति कैसे कर सकता है? नवविधा भक्ति है, प्रहलाद महाराज ने बताई हुई श्रीमद् भागवत में। उसमें सबसे पहले दो अंग कौन से हैं भक्ति के? श्रवण और कीर्तन। तो ये जो भक्त हैं, जो बहरे हैं, गूंगे भी हैं, न वो श्रवण कर सकते हैं न कीर्तन कर सकते हैं, तो फिर कैसे वो भक्ति करेंगे? जितने भी श्लोक हमने अभी बताया है, वो श्रवण के ऊपर निर्भर है, कीर्तन के ऊपर निर्भर है, और ये लोग ना कीर्तन कर सकते हैं ना श्रवण कर सकते हैं, फिर भी कैसे भक्ति कर रहे हैं ये लोग? बहुत ही विशेष बात है ये। आपने कभी गूंगे भक्तों के बीच में बैठ के उनका कीर्तन सुना है? सुनने की बात नहीं, केवल देखना, क्योंकि ध्वनि तो नहीं होती। एक भक्त कह रहे थे कि वो एक बार एक ऐसे पाठशाला में गए थे जिनमें केवल गूंगे बच्चे थे, और ऐसे भी भक्त थे जो गूंगे थे, तो उन्होंने कीर्तन करवाया उनसे, केवल इशारे से कीर्तन, कोई ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन धुआंधार कीर्तन हुआ। तो आप मेरे पीछे पीछे महामंत्र बोलेंगे उनकी भाषा में? ध्यान से सुनिए, करिए ताली नहीं, ऐसे ऐसे। ये है हरे कृष्ण, ठीक है? तो फिर से पूरा महामंत्र करते हैं। तो ये है कृष्ण, ये है हरे, ये है राम, ठीक है? अब कल्पना कीजिए कि आधा घंटा आपको ऐसे कीर्तन करना, और बड़े आनंद से सब कीर्तन कर रहे थे। फिर से एक बार करेंगे। हम बहाना बनाते हैं, हम नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, श्रवण नहीं कर सकते, लेकिन कितनी अच्छी तरह से वो लोग कर रहे हैं। एक भक्त से पूछा, हमने कहा उनकी दीक्षा हुई है, ठीक है आप चार नियम का पालन तो करते हैं, लेकिन 16 माला कैसे करते हैं, है ना? हम 16 माला करते हैं तो हमारे लिए तो कोई बात नहीं है, हम उच्चारण करके बोल लेते हैं, वो कैसे करते हैं 16 माला? दीक्षा लिया हुआ है ना उन्होंने, कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा कि पहले जब मैंने माला करना शुरू किया, एक माला के लिए मुझे आधा घंटा लगता था। तो कैसे हो? आधा घंटा भी लगा उस समय, लेकिन कैसे करते थे? वो कहने लगे हम अनेक तरीकों से करते थे। कभी कभी हम मन में कल्पना करते थे, ये जो इशारे हैं, इशारों को मन में चित्र बनाते थे। ऐसे मन में चित्र कीजिए, ऐसे वो मन में चित्र कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कि वो लिखे हुए शब्दों को पढ़ते थे, चाहे देवनागरी में हो अंग्रेजी में हो, महामंत्र लिखा हुआ है तो अपने मन ही मन में वो चित्र को देखते थे, या तो फिर लिखे हुए चित्र को देखते थे। और फिर एक मंत्र हो गया, दूसरा मंत्र हो गया। कभी कभी वो राधा कृष्ण के चित्र को देख के ऐसे करते थे, हरे कृष्ण, क्योंकि हरे कौन है? राधा रानी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, इनको इनको देख के, पहले राधा रानी को देखना, कृष्ण को देख, राधा रानी को देखना, कृष्ण को देखना, ऐसे वो करते थे। या तो फिर कभी कभी वो कहते थे, हम लोग मुंह से कुछ शब्द निकालते थे लेकिन उनको पता नहीं कि ये सही है कि नहीं, वो कोशिश करते थे बोलने के लिए। तो कहने लगे धीरे धीरे से जब अभ्यास हो गया तो आधा घंटा न लग के अब 20 मिनट लगने लगे, और अब अनेक वर्षों के बाद 15 मिनट में एक माला में कर लेता। लेकिन जो नए नए शुरू करते हैं उनको बहुत समय लगता है, कभी 30 मिनट, कभी 40 मिनट एक माला के लिए। तो इस तरह से वो जप करते हैं। तो 15 मिनट एक माला लेके फिर वो काफी समय लगता है उनको करने के लिए, लेकिन उनके शायद उनके लिए विशेष कोई छूट है। बहुत समय लगता है उनको, दिन भर बैठ के वही करना संभव नहीं है। लेकिन और एक भक्त है जो बता रहे थे कि जब वहां बहरे लोगों के पाठशाला में गए तो वो लोग, इतने बच्चे इतने खुश थे, सुनना चाहते थे कृष्ण के बारे में, और ये करते रहे, बस रोक नहीं रहे थे। और जो एक सुनने वाले एक भक्त भी उनके साथ में था, वो केवल चमत्कार से देख रहे थे क्या हो रहा है इधर। बोले इतना उत्साह तो हमें भी कीर्तन में नहीं आता। और उन्होंने कहा कि ऐसा कीर्तन पहली बार मैं सुन रही थी जहां कोई आवाज नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं आवाज है, हृदय की आवाज है। भगवान श्री कृष्ण हर एक भाषा को समझ लेते हैं। कोई भी भाषा आप बोलिए, मनुष्य समाज की भाषा हो, पशुओं की भाषा, कीड़ों की भाषा, हर भाषा समझ लेते हैं। तो बहरे और गूंगे लोगों की भाषा भी समझ लेते हैं। इसलिए ऐसे भक्ति के रास्ते में कोई बाधा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं। और आपस में ये भक्त लोग जगह जगह भक्तों के बीच में जाके प्रवचन भी देते हैं। उनकी भाषा होती है, वो सीखना पड़ता है, जैसे हमें भी ये सब सीखना पड़ता है ना। हम अभी प्रवचन सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो भाषा की जानकारी आवश्यक है ना, नहीं तो हम नहीं समझेंगे कि वक्ता क्या बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह से उन जो बहरे व्यक्तियों को सिखाया जाता है, अलग अलग शब्द होते हैं तो कैसे इशारों से, उंगलियों से वगैरह किया शब्द बताए जाते हैं। तो वो लोग जाके प्रवचन देते हैं और वो सब बैठ के सुनते हैं और उनको अच्छी तरह से समझ में आता है। परंतु समस्या उनके लिए एक है कि जो साधारणतः बहरो लोगों के लिए जो भाषा है उसमें हमारे आध्यात्मिक शब्द नहीं आते। उनको वैसे भी भक्तों को शब्दों को इशारों से करना बहुत मुश्किल है, जैसे वृंदावन कैसे बताएं? तो वो क्या करते हैं, कहते हैं ऐसे और ऐसे, जैसे बच्चे को, जैसे भगवान को ले गए ना वसुदेव मथुरा से देवकी, मथुरा से गोकुल, तो क्योंकि यहां से वहां ले गए, फिर ऐसे वृंदावन भी, भी और ऐसे, तो समझ लेते हैं कि वृंदावन है। इस तरह से उन्होंने भाषा बनाई है अपनी भाषा। तो यहां दूसरे जो अभक्तों की भाषा है बहरे, उनके शब्द कुछ अलग होते हैं, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक शब्द, भक्ति के शब्द उनके नहीं होते हैं। तो इस तरह से उनको भारत में आने से थोड़ा उनकी भाषा थोड़ी अलग से बोलनी पड़ती है। जैसे कोई भी भाषा हो, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से बोलते हैं ना। यहाँ जो कन्नड़ बोलते हैं और मैसूर में जो कन्नड़ बोलते हैं अलग है ना, यहाँ जो मराठी बोलते हैं पुणे में जो मराठी बोलते हैं अलग है ना। तो उसी तरह से बहरों की भाषा भी वहां जो बोलते हैं यहाँ तो कुछ अंतर है, फिर भी वो प्रवचन देते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, उनके नाटक भी होते हैं। नाटक करते हैं वो लोग, सब अपने अपने इशारों से बात करते हैं, ऐसे वैसे देखने वाले भी बहरे, नाटक करने वाले भी बहरे। कितना चमत्कार है। शांतिपूर्वक कीर्तन, क्योंकि ये आध्यात्मिक ध्वनि है, भक्ति के लिए कोई भी बाधा नहीं है। मैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बता रहा था कि वास्तव में हमारे तीन प्रकार की इंद्रियां हैं। इंद्रियां अर्थात क्या, हमारे जैसे आंख, कान, नाक, जीभ इत्यादि, तीन प्रकार के हैं। एक है हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां, जैसे ये आंख है, ये कान है जिसको हम पकड़ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ये जीभ है। परंतु जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर के आंख, नाक, कान सब होते हैं ना, फिर भी वो सुन नहीं सकता। इसका मतलब है कि केवल स्थूल शरीर के कान, नाक, आंख इत्यादि होने से हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और भी चीजों की आवश्यकता है। इस स्थूल शरीर के अतिरिक्त और क्या है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के भी अपने आंखें हैं, कान है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? भूत, भूत के पास, डरिए मत, भूत के पास उसके भी इंद्रियां होती हैं, शरीर नहीं होता, फिर भी वो देख सकता है। कभी कभी वो बात करने में शायद मुश्किल हो भी सके, दूसरे के माध्यम से बोलना पड़ता है, लेकिन वो भोग नहीं कर सकता, दूसरे के शरीर में घुसना पड़ता है भोग करने के लिए, दूसरे के शरीर में प्रवेश करके फिर वो भोजन का आनंद लेता है इत्यादि। फिर भी सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां भी होती हैं, जिनके कारण हम देख सकते हैं स्थूल शरीर के माध्यम से। परंतु सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है, तो इसके पीछे भी आत्मा है जो आध्यात्मिक है। आत्मा के अपने इंद्रियां होती हैं, आत्मा के आंख होते हैं, आत्मा के कान होते हैं। इस तरह से आत्मा शरीर में है, इसलिए व्यक्ति की सूक्ष्म इंद्रियां और स्थूल इंद्रियां काम करती हैं। आत्मा न हो तो सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियां काम नहीं करेंगी। तो हमने कहा आपकी समस्या ये है कि आपके स्थूल शरीर के कान काम नहीं कर रहे हैं, परंतु स्थूल शरीर काम कर रहा है और आत्मा की इंद्रियां हैं। इसलिए भले हम जब हम जोर से कीर्तन करते हैं, हम लोग जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, हम लोग ध्वनि के माध्यम से जब कीर्तन करते हैं, तो वो उनका स्थूल शरीर सुन नहीं पा रहा है, परंतु आत्मा सुन पा रही है, हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। तो जैसे वो कीर्तन में बैठे, भले उनको कोई आवाज सुनाई ना दे, फिर भी वो ध्वनि उनके कानों के छेद के अंदर से जाके हृदय में जाती है, वहां पे मंथन हो जाता है और वहां पे हृदय का शुद्धिकरण होता है। पुनंतिते विषय विदूषिताशयम्। तो ये चमत्कार है, इसलिए हमने कहा ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत साल पहले भी, लगभग 30 साल पहले, जब हम बंबई में थे तो उस समय एक भक्त हुआ करते थे, अनंत देवदास उनका नाम था, वो ब्रह्मचारी थे, बहरे थे, और उन्होंने बहरे भक्तों का संघ खोला था, और वो उनके कार्यक्रम करते थे, बहुत जोरदार प्रचार करते थे बहरे लोगों के बीच में, अनेक बहरे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। आज भी वो कहाँ है पता नहीं किसी, लेकिन वहां जो एक जब गए थे तो एक माता जी हमको मिली, वो बोले हम उनको जानते हैं, उन्होंने हमको प्रचार किया, वही भक्त है, वो कहाँ दुनिया के दूसरी जगह में पहुंचे हैं। कितना उत्साह देखिए प्रचार के लिए, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन कृष्ण भक्ति दूसरों को देने का उत्साह कम नहीं हुआ। हमारे लिए कितना, कितने प्रेरणा की बात है। और वो भक्त, हम उनसे बात कर रहे थे, आपको कैसे लगता है कृष्ण भक्ति करते हुए जबकि आप सुन नहीं सकते हैं? उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने एक ऐसी सुंदर बात कही जो आपसे हम कहेंगे, सबसे अच्छी बात बहरे होने की ये है कि हम प्रजल्प नहीं सुनते हैं, कि नहीं? क्योंकि दिन भर लोग क्या करते हैं, तह तह की संसार की बातें करते हैं, उनकी कोई समस्या ही नहीं है, शांत है ये लोग। ज्यादातर हम लोग क्यों विचलित हो जाते हैं, कोई कुछ कह देता है बुरा लगता है, मन बिगड़ जाता है, इन्होंने ऐसे कह दिया, उन्होंने ऐसे कह दिया, ऐसे करके सारा मन विचलित हो जाता है, वो लोग सुन ही नहीं सकते तो समस्या ही नहीं, फिर मन शांत है। सुनते हैं तो केवल कृष्ण कथा सुनते हैं, अब आपस में उनके झगड़े होते होंगे, कैसे झगड़ा करेंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं करते हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं। तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है ये, और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे हम भी और गंभीरता से इस कृष्ण भक्ति के रास्ते को स्वीकार करें। भगवान ने हमें कान दिए हैं, अच्छे कान जिनसे हम सुन सकते हैं, मुंह दिया है जिससे हम बोल सकते हैं, तो इसका प्रयोग और किसी चीज के लिए नहीं करना चाहिए। जो अंधे होते हैं उनके लिए भी ऐसे ही है। सूरदास का नाम आपने सुना है ना, जो बहुत बड़े वैष्णव कवि थे, जाके फिर गोवर्धन के पास रहे अनेक वर्षों तक। वैसे कहा जाता है कि उनका जन्म कहीं हरियाणा में हुआ, कोई कहते आगरा के पास हुआ, खैर जहां भी, जन्म से ही वो अंधे थे। तो जब, और माता पिता बहुत गरीब थे और कई बच्चे थे उनके, तो ये गरीब, ये अंधा बच्चा हुआ तो सब लोग परेशान हो गए, अब इसका कैसे देखभाल करेंगे, कौन इसके पीछे रहेगा, तो लापरवाही करने लगे उसके प्रति, उसका देखभाल नहीं करते थे। तो दिवाली के समय भी अन्य भाई जो बच्चे थे उनको नए नए कपड़े देते थे, लेकिन इसको नहीं देखते थे, क्योंकि इसको क्या पता होगा कि दिखेगा नहीं ना किसके नए कपड़े हैं नहीं है, लेकिन उसको वो समझ लेता था बच्चा, तो उसको बहुत बुरा लगता था। जब उसके भाई बड़े हो गए, पढ़ने की आयु में आए, तो पिताजी उनको पढ़ाने लगे अक्षर, तो वो भी आके बैठ गए वहां। पिताजी ने कहा तू चले जा, तू देख नहीं सकता है, तू यहाँ क्यों बैठ रहा है, तो बहुत बुरा लगता था इस तरह से। जब खेलने जाते थे तो दिखता नहीं है, तो जो दूसरे बच्चे हैं मजाक उड़ाते थे, इस तरह से बेचारा बेचारी उनका जो बचपन था अच्छा नहीं रहा। एक बार अपने घर के आंगन में बैठा था, वहां से बाहर तो जा नहीं सकता था, जब उसके दोस्त उसको चिढ़ाते थे दूसरे बच्चे, तो माँ के पास आता था तो माँ तो उल्टा उसको डांटती थी, तू गया क्यों वहां पे, यहीं बैठ जा। तो एक बार एक भक्तों का जो संघ है, वो दल है, वो जा रहा था कीर्तन करते हुए, थोड़े साधु लोग जा रहे थे और भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे थे, कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो बच्चा तो बहुत छोटा था उस समय, 4, 5, 6 साल का हुआ होगा उस समय, उसने ये कीर्तन सुने, उसे बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही बैठ गया, तो ध्यान से सुना, क्योंकि जो लोग देख नहीं सकते हैं ना उनकी सुनने की जो इंद्रियां हैं, श्रवण इंद्रियां हैं, वो बहुत तेज होती हैं। तो बहुत ध्यान से सुना और याद कर लिया, फिर उन्हें भजनों को, कीर्तनों को वो गाता रहा। थोड़े दिन बाद और ऐसे कोई साधु लोग आए, वहां से गुजर रहे थे, वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो वो भी भगवान का नाम लेते जा रहे थे। तो इस बार वो अपने आप को रोक नहीं पाया बच्चा, तो सीधे उनके पीछे पीछे चलने लगा। और वो काफी दूर चले और फिर एक स्थान पे बैठे। उन्होंने देखा कि ये बच्चा हमारे पीछे पीछे आ रहा है और ये भी अंधा है, भाई हमारे पीछे क्यों आ रहा है, घर से घर चले जा वापस। कर नहीं नहीं मुझे आपके साथ में रहना है। क्यों रहना है? मुझे आपसे सीखना है कि कैसे कृष्ण के बारे में गाया जाता है, मैं भी संगीत सीखना चाहता हूं आपसे। तो उन्होंने तो खिला तो दिया भोजन उनको, लेकिन उन्होंने सोचा कहाँ कहीं अंधे बच्चे को लेकर बैठे हैं, कहाँ उसको ले जाएंगे, कैसे देखभाल करेंगे इसका। तो अगले दिन सुबह सुबह चुपके से वो सब निकल गए। तो फिर से ये बच्चा अकेला रह गया, अपने घर से भी बहुत दूर था। तो उसी गांव के लोगों ने उसको देखा और थोड़ा भोजन आदि दिया और वो गाने लगा। और उसके गाने इतने मधुर थे और भगवान कृष्ण के संबंध में थे, तो बहुत सारे गांव वाले आके आकर्षित होके बैठने लगे और उसको भोजन मिलता रहा। और इस तरह से समय बीता। थोड़े समय बाद बच्चे को पता चला कि मुझे ऐसे भी चीजें पता चल सकती हैं जो कि मैं देख नहीं सकता, तो आगे चल के क्या होगा, वहां क्या हुआ, वो सब बता सकते थे। वहां के इलाके का एक जमींदार था जिसका बच्चा खो गया था। बच्चा कहीं खेल रहा था, यहां वहां कहीं चला गया, तो सब लोग ढूंढ रहे थे, उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो इस बच्चे सूरदास को आके पूछा कि बच्चे को देखा है क्या? तो बच्चे ने, सूरदास ने उत्तर दिया कि ये बच्चा अमुक अमुक स्थान पे होगा, यहाँ पे आप उसको पा सकते हैं वहां। और वाकई बच्चा वहां पे था। तो जमींदार बहुत प्रभावित हो गया, तो उसके लिए एक रहने का स्थान बना दिया। और सब लोग, सारे गांव के लोग, आसपास के लोग भी आने लगे उनके पास, और वो अपने संगीत को बढ़ाते रहे। उनके कई शिष्य वहां बन गए, संगीत के शिष्य भी। लेकिन एक दिन उनको भगवान कृष्ण सपने में आए, कहा कि वृंदावन आओ, मेरे पास आओ। तो सब कुछ छोड़कर वो वृंदावन के लिए निकले। वहां गांव के लोग उनके पीछे लगे कि हमारी सेवा में कोई कमी हुई, क्या दोष गलतियां की हमने, बताइए, अब रह जाइए। कहने नहीं, श्री कृष्ण का बुलावा आया है, हम जाएंगे वृंदावन। तो वृंदावन की ओर वो निकल पड़े। ऐसे भी बताया जाता है कि रास्ते में एक बार वो किसी कुछ सूखे हुए कुएं में गिर पड़े। उनको दिखाई नहीं पड़ा कि कुआं कहाँ है, क्या है, गिरे अंदर तो घायल हो गए, देख भी नहीं सकते थे। तो पूरे 7 दिन बीत गए, वो अकेले उस कुएं के अंदर थे। ऐसे लोक कथा है कि सब तक सत्य है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं। और फिर 7 दिन के बाद स्वयं श्री कृष्ण ऊपर से आए, मुझे हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हें ऊपर ले आऊंगा। तो ऊपर आए, स्वयं श्री कृष्ण को लेकर आए, ऐसे लोग वहां कहते हैं। और फिर वहां वास्तव में राधा रानी उनके सामने आई एक दिन और कहने लगी कि आओ, मैं तुम्हें, राधा रानी के पास में आने से उन्होंने उनकी जो नूपुर है वो ले लिया। राधा रानी ने कहा कि नूपुर लौटा दो मुझे। कहा कि नहीं, मैं देख नहीं सकता, तुम कहा, आप कहाँ हो मैं कैसे जानूं, पहले मैं दर्शन करना चाहता हूँ, फिर आपके नूपुर दे दूंगा वापस। तो भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन, उनकी दृष्टि दे दी, फिर उन्होंने वो नूपुर वापस दे दिए। तो भगवान ने उनसे पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए, कैसे वरदान मांगा उन्होंने पता है? हाँ, क्या वरदान मांगा होगा? मुझे फिर से अंधा बनाइए। क्योंकि आप दोनों के सिवाय मैं किसी और को देखना नहीं चाहता। यहां सब दुनिया में देखने से मन विचलित हो जाता है, यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, ये है वो है, कोई आवश्यकता नहीं। आंखें केवल आपको देखने के लिए है और अंतःकरण में मैं आपको देख रहा हूं, बस इतना आप मुझे वरदान दीजिए। ये बाह्य आंखों की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने इच्छा पूरी कर दी, फिर से वो अंधे हो गए, पर उनकी भक्ति में कोई घटन नहीं हुई, भक्ति बढ़ते रहे। ऐसे बताया जाता है कि वृंदावन में आके फिर वो उन्होंने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली और सूर्य कुंड में वहां गोवर्धन के पास फिर बैठे, उनकी भजन कुटीर वहां पे है, वहां पे उन्होंने भजन किए। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बड़े बड़े भक्त हैं जो अंधे थे। बिल्व मंगल ठाकुर भी बाद में जाके अंधे हो गए। बरसाने के मोर कुटीर में भी एक अंधे संत रहा करते थे जिन्होंने चित्र बनाया राधा कृष्ण का, जो कि मोर के साथ नृत्य कर रहे थे। ये जो शरीर, स्थूल शरीर की इंद्रियां हैं, भले ये काम करें या न करें, परंतु भगवत भक्ति में ये कोई बाधा नहीं है। परंतु जब काम करते हैं तो उनका सही उपयोग हमें करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए उन बहरे व्यक्तियों के बारे में, गूंगों के बारे में, अंधों के बारे में, जो नहीं कर सकते हैं हमारी तरह सुनना, बोलना, देखना, फिर भी वो भक्ति करते हैं। तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है ये सब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बहुत ही उत्साह और ध्यान से हमारे श्रवण को हमें करना चाहिए, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम इत्यादि। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आपके?
अभी आपने जो बताया सूरदास जी, और अभी बांके बिहारी का मंदिर का भी सूरदास जी,
सेम है, वही है। अच्छा, अंतिम बार महामंत्र करते हैं उनकी भाषा में, याद रहेगा आपको?